इशिका की डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई बाहर आ चुकी थी। इशिका तो राजवंश एम्पायर से चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद हड़कंप सा मच गया था। पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी हंगामा मचा हुआ था। अभिमन्यु मालविका से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने उसे एक मौका दिया था कि वो असली साजिश करने वाले का नाम बता दे, लेकिन मालविका आयशा का नाम कैसे ले सकती थी? वो उसकी खुद की बेटी थी। अभिमन्यु ने पुलिस को बुलाकर मालविका को अरेस्ट करवा दिया था। मालविका के अरेस्ट हो जाने के बाद आयशा ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस मैटर में उसका नाम नहीं आया था। पर अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने नक्श की तरफ देखा, जो उसे बुरी तरह इग्नोर कर रहा था। नक्श ने नफरत भरी निगाहों से आयशा की तरफ देखा और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड की तरफ। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे पूरी साजिश आयशा और नक्श ने की हो। नक्श के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो गुस्से से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। आयशा जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोली, नक्श प्लीज मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो, आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आयशा जब नक्श के पीछे गई तो अभिमन्यु उसे जाते हुए देख रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, एक चीज समझ नहीं आ रही है, मालविका आयशा का इतना फेवर क्यों कर रही थी? उसने ये क्यों नहीं बताया कि आयशा ने ही पूरी साजिश की है? अचानक अभिमन्यु ने खोई हुई आवाज में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आयशा सिंघानिया मालविका दास की बेटी ज्यादा लगती है। वहीं पृथ्वी अभी तक इस बात के सदमे में था कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। उसे अभिमन्यु की बात सुनाई तो दी थी, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अचानक पृथ्वी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो वो उसे चेक करने लगा। पृथ्वी ने देखा, राजवंश एम्पायर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले जहां सब लोग अभिमन्यु को भला बुरा कह रहे थे कि वो एक इंटर्न की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसका साथ दे रहा था, तो वहीं अब वहां पर इशिका की सच्चाई खुलने के बाद सब अभिमन्यु और इशिका की तारीफ कर रहे थे। पृथ्वी मन ही मन मुस्कुराते हुए उनके कॉमेंट्स अपने मन में पढ़ने लगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि डॉक्टर मर्चेंट इतनी यंग है, साथ ही इतनी खूबसूरत और एक कम उम्र की लड़की डॉक्टर मर्चेंट हो सकती है, ये किसने सोचा होगा? इसका मतलब मिस्टर अभिमन्यु राजवंशी डॉक्टर मर्चेंट को ऑफिस में लेकर आए थे, ना कि नक्श राजवंश। पृथ्वी ने आगे कमेंट स्क्रॉल किया तो किसी एक बंदे ने लिखा था, अरे उस नक्श राजवंश का तो नाम भी मत लो, उसने ये बोलकर अपने प्रमोशन को हासिल किया था कि उसने डॉक्टर मर्चेंट को R&D डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करवाया है। मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि डॉक्टर मर्चेंट ने राजवंश एम्पायर छोड़ दिया है, ये सब नक्श राजवंश की वजह से हुआ है, वो बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए थे, किसी दूसरे ने कॉमेंट में लिखा था। उन सारे कॉमेंट्स को पढ़ने के बाद पृथ्वी के चेहरे पर तसल्ली थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी बदतमीजियों के लिए इशिका से जाकर माफी मांगे। दोनों के फेशियल फीचर्स थोड़े बहुत मिलते हैं ना, अभिमन्यु ने फिर से कहा, तो पृथ्वी का ध्यान टूटा। फिर उसे अभिमन्यु की पहले कही गई बात समझ में आई। पृथ्वी ने जवाब में सिर झुकाकर कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, आखिर कौन सी माँ अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगी? इशिका के घर छोड़ने पर उसने कोई शिकायत नहीं की और मिस सिंघानिया ने बताया था कि वो उसे धमकी देती थी कि वो उसे बेच देगी। कोई भी माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती है, आखिर एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही बच्चों को छोड़ दे? अचानक अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द हो गए और वो उसी अंदाज में बोला, नहीं, कुछ माएँ ऐसी ही होती हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर पृथ्वी चौंक गया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। अभिमन्यु की माँ ऐसी ही थी, शायद इस वजह से उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। पृथ्वी ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, सर आपने राघव मित्तल से अपॉइंटमेंट लिया है ना, कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। मुझे पता है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु और पृथ्वी दोनों ही अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों वहां से जाने लगे। वहीं लिफ्ट के पास आयशा नक्श का हाथ पकड़कर खड़ी थी। आयशा नक्श के सामने रोते हुए बोली, नक्श मेरी बात का यकीन करो, मुझे पहले से कुछ नहीं पता था। इशिका ने जानबूझकर अपनी पहचान मुझसे छुपा कर रखी थी, वो मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी। नक्श ने गुस्से में आयशा का हाथ झटक कर कहा, मैं उसे तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ, वो ऐसी इंसान नहीं है, उसे छोड़ो और मुझे ये बताओ कि डॉक्टर मर्चेंट ने कभी राजवंश एम्पायर ज्वाइन करने के लिए हाँ ही नहीं कहा था ना, ऐसा ही है ना आयशा? नक्श की बात सुनकर आयशा चौंक गई, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। आयशा उसे कोई सफाई देती उससे पहले नक्श ने सिर हिलाकर कहा, यू नो वॉट आयशा, मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हारे साथ सगाई करने का सोचा। नक्श प्लीज नहीं, आयशा ने प्लीडिंग वे में कहा। आयशा उसे रोकना चाहती थी पर नक्श बोला, कल मैं ऑफिशियली हम दोनों की सगाई कैंसिल कर दूंगा। आयशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, ये सब इशिका की वजह से हो रहा था, ये सोचकर ही उसके दिमाग की नसें फट रही थीं। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से राघव मित्तल निकला। उसे देखते ही नक्श के चेहरे के भाव बदल गए। नक्श राघव मित्तल को पहले से जानता था, फिर भी उसने कन्फर्म करने के लिए पूछा, आप मिस्टर राघव मित्तल है ना? राघव नक्श को देखकर रुका और हल्के से हाँ में सिर हिलाया। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मैं नक्श राजवंश, मुझे चाचू ने बताया था कि हम साथ में काम करने वाले हैं। राघव ने उसे हाथ मिलाकर कहा, तो आप मिस्टर नक्श राजवंश हैं, मैं वैसे अभिमन्यु राजवंश से मीटिंग करने के लिए आया था, नक्श इससे बात करना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु का जिक्र होते ही वो शांत हो गया। तभी अचानक आयशा ने पीछे से कहा, क्या आप मिस्टर राघव मित्तल हैं? नक्श और राघव ने मुड़कर आयशा की तरफ देखा। आयशा ने कल राघव को हॉस्पिटल में देखा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव मित्तल जैसा अमीर आदमी उस बीमार लड़की का भाई निकलेगा। राघव आयशा से पहली बार मिल रहा था, उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं आपको जानता हूँ? आयशा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, शायद आप भूल गए हैं, कल लाइफ केयर हॉस्पिटल में आपकी बहन बीमार थी, मैंने आपको कॉल किया था। उस वक्त राघव ने इशिका को ठीक से देखा नहीं था, इसलिए वो आयशा की बातों में आ गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो आप ही वो नेक लड़की हैं जिसने मेरी बहन की मदद की थी। आयशा ने मुस्कुराते हुए हामे सिर हिलाया और नक्श का हाथ पकड़कर कहा, जी बिल्कुल, और ये मेरा फियांसे नक्श राजवंश है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राघव ने हैरानी जताते हुए कहा। पहले जहां राघव सिर्फ अभिमन्यु से मीटिंग करने आया था, वहीं अब आयशा से मिलने के बाद वो नक्श से बोला, मैं और मिस्टर अभिमन्यु राजवंश एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में होगा। अगर आप चाहो तो हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर राजवंश। राघव अच्छे से जानता था कि किसकी क्या पोजीशन है, ऐसे में अगर आयशा उसकी बहन की हेल्पर बनकर सामने नहीं आती तो वो कभी नक्श को इस मीटिंग के लिए नहीं पूछता। वो बस आयशा का एहसान चुकाना चाहता था जो उसने कभी किया ही नहीं था। राघव के पूछने पर नक्श भी हैरान रह गया। आज डॉक्टर मर्चेंट यानी कि इशिका के जाने के बाद R&D डिपार्टमेंट में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी, ये सब आयशा की वजह से हुआ था। लेकिन राघव मित्तल के इस तरह मीटिंग में इन्वाइट करने के बाद उसकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। आखिर राघव मित्तल कौन था ये सभी जानते थे। वो हर किसी को अपनी मीटिंग में बुलाना पसंद नहीं करता था, जबकि उसने आज सामने से नक्श को मीटिंग अटेंड के लिए बुलाया था।
नक्श ने आयशा की तरफ देखा और कहा, फिलहाल मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा। ऐसा करते हैं, कल हम शॉपिंग पर चलते हैं और हमारी एंगेजमेंट रिंग देख कर आते हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ क्यों नहीं। नक्श की बातों से साफ था कि अब वो आयशा से शादी करने से पीछे नहीं हट सकता है। वहीं ऊपर जाने के बाद अचानक राघव ने इशिका का नंबर ढूंढा और उसे मैसेज किया, मिस सिंघानिया आप कब फ्री होंगी? अगर आपके पास टाइम है तो रात को आपकी और आपके मंगेतर के साथ डिनर पर मिलते हैं। राघव ने अपनी तरफ से ये मैसेज आयशा को किया था, लेकिन ये मैसेज कियारा की लाइफ बचाने वाले असली सेवियर यानी कि इशिका के पास जा पहुंचा था। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी दिन ये आयशा बुरी तरह फंसने वाली है। पता नहीं क्या सोचकर इसने इशिका की जगह खुद को आगे खड़ा कर दिया, और जब सच सामने आएगा तो फिर से इसकी पोपट हो जाएगी। वैसे अभिमन्यु को कहीं ना कहीं डाउट हो गया है कि मालविका इशिका की मां नहीं है। देखते हैं वो इस मैटर में क्या करता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।